ஓம் சாந்தி. ज्ञान में 1981 में हम आए और हमारा एक सौभाग्य रहा कि जब भी वैकेशन हो जाता था हम मधुबन आ जाते थे और दादी को मिलना हमारे लिए बहुत ही सहज हुआ करता था क्योंकि दादी भी आंगन में बैठे होते थे और दादी सभी को बहुत ही प्यार से मिलते थे और हमारी ड्यूटी होती थी जब हम मधुबन में आते थे तो सुबह में रोटी में और शाम में 4 से 8 बजे हमारा जो म्यूजियम है नखी लेक पर वहां हम सेवा करने जाते थे. तो जब हम वापस आते थे 8 बजे तब भी दादी आंगन में होते थे तो दादी हमें हमेशा पूछती थी, अच्छा बताओ आज कितनी पार्टी समझाई, किसी ने कुछ ऐसा प्रश्न पूछा जो आप जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि छोटे छोटे थे तब. तो फिर वैकेशन में आते थे तो दादी की पालना भी बहुत मिलती थी. दादी को गुड मॉर्निंग भी रोज करने जाते थे हम. एक बार मधुबन में हम आए थे, मेडिटेशन हॉल था तब, बाबा मेडिटेशन हॉल में आते थे और दूसरे दिन मुझे वापस जाना था और बाबा आए हुए थे मेडिटेशन हॉल में. तो हम तो बाबा जब भी आते थे तो सारी रात जागते थे. तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट इंचार्ज थे ओम प्रकाश भाई, उनको पता था कि कल सुबह मेरी ट्रेन है तो उसने मुझे कहा कि तुम रात को ही चले जाओ संगम भवन में जाकर के रुकना. अब बाबा मधुबन में आए हो, किसका मन करेगा जाने का. तो मैंने भाई साहब को बोला नहीं मैं सुबह जाऊंगी. कहते कोई और जाने वाला नहीं है, तुम अकेली हो. मैंने कहा कि क्या करूं, तो कहते नहीं अभी जाओ. फिर मैं दादी जी के पास गई, मैंने कहा दादी मैं छुट्टी लेने आई हूं. दादी कहती कहां जा रही हो अभी. मैंने कहा दादी मेरी सुबह ट्रेन है तो संगम भवन जाकर के रुकने के लिए ओम प्रकाश भाई ने कहा है. दादी कहती ओम प्रकाश को बुलाओ. अब मैं तो गई भाई साहब को बोला, भाई साहब दादी आपको बुला रहे हैं. तो भाई साहब को थोड़ा डाउट्स तो आया और फिर दादी ने पूछा कि इनको क्यों अभी रात को भेज रहा है. तो कहते दादी सुबह में उसकी ट्रेन है. दादी पूछती कितने बजे ट्रेन है, कहते 8:30 बजे ट्रेन है. तो कहते 8:30 बजे है ना, अभी क्यों भेजता है. मैंने भी कहा दादी मेरी दिल नहीं है जाने की. तो दादी ओम प्रकाश भाई को कहती है ये कन्या कल सुबह ही जाएगी, दादी की कार उसको छोड़ने जाएगी. आप विश्वास नहीं करो, 1982 की बात है ये. मैं एकदम नई कन्या, यज्ञ में और कोई गाड़ी थी ही नहीं, केवल एक दादी की गाड़ी थी. मुझे इतना मेरी दिल गदगद हो गई उस समय कि दादी मैं एक साधारण कन्या और दादी मुझे अपनी गाड़ी ऑफर कर रही है. कोई बात नहीं, सुबह के लिए हम तो रुक गई. अभी ओम प्रकाश भाई की जिम्मेवारी थी मुझे भेजना. अभी वो देख कहता है ये कौन सी कन्या है जो आज मेरे को फेल कर दिया. मैं तो कुछ थी भी नहीं, पढ़ाई कर रही थी तब. तो कहता मैं देखता हूं कैसे दादी की गाड़ी जाती है. और मैं निश्चिंत हो गई, अभी उनकी जिम्मेवारी है मुझे भेजना. फिर सुबह में रोज ट्रक जाती है सब्जी लेने के लिए, मुझे वो ट्रक में बिठा दिया कि तुमको जाना है तुम जाओ ट्रक में. मैंने कहा मुझे कोई हर्जा नहीं क्योंकि बाबा आए हुए थे। तो दादी बहुत दिल लेती थी। और फिर जब मधुबन में हम आते थे वैकेशन में तो कन्याओं की भट्टियां होती थी और मैं कभी कन्याओं की भट्टी नहीं करती थी। तो दादी मुझे कहती थी कि तुम भट्टी में क्यों नहीं बैठती हो। तो एक बार मैंने दादी को कहा, दादी ये भट्टी में ना हिप्नोटाइज हो जाते हैं, तो मुझे वो हिप्नोटाइज नहीं होना है, क्योंकि अगर भट्टी की क्लासेस के आधार से अगर मुझे वैराग्य आया तो वो शायद परमानेंट नहीं होगा। इसीलिए मुझे जब अंदर से वैराग्य आएगा तब जाकर के मैं सेंटर पर रहूंगी। तो दादी ने कहा ठीक है, देखती हूँ, आज के बाद दादी कभी नहीं कहेगी तेरे को, तुम जब दादी को कहेगी कि सेंटर पर जाना है मुझे, तब दादी स्वीकार करेगी। ठीक है। फिर एक बारी मैं एमकॉम कर रही थी और हमारी एग्जाम लेट हो गई, तो हमें अहमदाबाद में एग्जाम देनी पड़ी। और उन्हीं दिनों मेरी एग्जाम पूरी हुई और दादी जी का ऑस्ट्रेलिया की टूर करके आना हुआ, तो हम भी दादी के साथ ट्रेन में मधुबन आ गए। वैसे आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन दादी ऑस्ट्रेलिया से आई थी और दादी यहाँ स्वर्ग बनाया था और बहुत ही भव्य दादी का स्वागत होने वाला था। तो सरला दीदी ने हमें प्रेरणा दी कि आप लोग जाओ, क्योंकि मेरी चाची भी लंदन से आई थी तो वो भी कुछ सामान लेकर के आई थी, तो हम दोनों अहमदाबाद में थे। तो फिर दादी के साथ ही हम ट्रेन में आए। दादी मुझे पूछती है कब तक पढ़ाई करनी है, क्या बाबा की सेवा में नहीं लगना है? तो मैंने कहा दादी मैं नौकरी करके धन से सेवा करूंगी। दादी कहती है तुम्हारे धन की बाबा को कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी बाबा को जरूरत है। मैंने कहा दादी मुझे कोई स्थूल सेवा आती नहीं है, कुछ भी काम करना आता नहीं है, मैं क्या सेवा करूंगी सेंटर पर? कहती मुरली सुनानी तो आती है ना, तुम मुरली सुनाया करना। तो मुझे थोड़ा अंदर से लगा कि सेंटर पर और सेवा किए बिना मुरली थोड़ी सुनाई जाती है। फिर हम मधुबन में आए तो राजू भाई ने मुझे क्लास पढ़ने के लिए दिया और वो क्लास की हेडिंग थी पढ़ो लिखो कुछ भी करो लेकिन मुझे जवाब दो कल किसने देखा। ये क्लास पढ़ करके मैं तुरंत दादी के पास गई और मैंने दादी को बोला दादी मैं सेंटर पर जाना चाहती हूँ। दादी कहती है मुट्ठी कल तो मना कर रही थी और आज कहती है मैं सेंटर पर जाना चाहती हूँ। अब दादी रिवर्स हो गई, अब कहे नहीं तुम पढ़ाई पूरी करो, शुरू किया है तो पढ़ाई पूरी करो फिर तुम सेंटर पर जाना। मैंने कहा नहीं दादी, मैंने आपको बोला था कि जिस समय मुझे अंदर से आएगा मैं किसी को पूछने नहीं रहूंगी, आप मुझे भेजो। फिर भी दादी कहे कि नहीं तुम एग्जाम देकर के सीधा आई हो, घर जाओ, माँ बाप की परमिशन लो फिर आओ। मतलब दादी बहुत अच्छी तरह से प्यार भी करती थी और ऑफिशियल भी हो जाती थी। जहां दादी जी को ऑफिशियल होना होता था दादी हो जाते थे। और फिर मैं घर में जाकर के छुट्टी लेकर के आई और मैंने दादी को कहा कि दादी अब मैं रेडी हूं, आप जहां भेजना चाहो वहां मैं तैयार हूं। दादी कहती ठीक है मैं सोचती हूं तेरे लिए तुमको मैं कहां भेजू। फिर हमारी लच्छू दादी थी तो लच्छू दादी ने कहा कि दादी दादी जानकी आने वाली है तो इस कन्या को ही दादी जानकी की सेवा में रख लो। दादी ने कहा ठीक है उसको बुलाओ मेरे पास। मैं गई दादी के पास। दादी कहती है प्रवीणा देखो दादी जानकी को इस समय ना बहुत लंबा रुकना है क्योंकि 86 का जो वर्ष था वो हमारा गोल्डन जुबिली वर्ष था। तो कहती है कि तुम रुक सकती हो और मैं आई थी नवंबर में मधुबन में और दादी भी नवंबर एंड तक आ जाने वाली थी। तो मुझे दादी कहती है तुम रुको और दादी की सेवा में मदद करो। मैंने कहा ठीक है दादी। और मैं, हमारी जो एग्जाम डिले हुई थी ना, वो छह महीने में मैंने अपने आप को बहुत ट्रेनिंग दी थी, पढ़ाया था। और एक बात मैंने पक्की की थी कि जो भी सेवा मिले मुझे हाजी करना है। अब जब मुझे दादी जानकी की सेवा के लिए दादी ने कहा तो मैंने कहा ठीक है दादी। और मैं दादी जानकी जब आई तो मैं गई नहीं दादी के पास, तो बड़े दादी ने मुझे कहा दादी से मिली हो? मैंने कहा नहीं दादी, पहले बहुत बारी मिली थी लेकिन इस समय नहीं जब सेवा दी तो। तो कहती क्यों नहीं गई? तो मैंने कहा दादी आप मेरा परिचय भी तो कराएंगे ना, फिर मैं जाऊंगी। तो दादी ने कहा ठीक है, दोपहर को हम भोजन करके निकलते हैं ना, तुम आंगन में रहना। दादियां जब 3 बजे भोजन करके बाहर आते थे तो मैं आंगन में बैठी थी। दादी ने कहा प्रवीणा इधर आओ। मैं गई, दादी ने कहा दादी जानकी को कि ये कन्या मैं आपको देती हूं, इसको आप ब्रह्मा कुमारी बनाएंगी। दादी जानकी ऊपर से नीचे तक देख करके कहती दादी ये है ही ब्रह्मा कुमारी? दादी कहते अभी तक तो नहीं है ये ब्रह्मा कुमारी, तुम बनाएंगे उसको ब्रह्मा कुमारी। तो ऐसे दादी जानकी, बड़ी दादी ने मुझे दादी जानकी को दिया था। और फिर हमेशा मुझे नहीं था, मैंने समझा इसी वर्ष रहना, लेकिन फिर बड़ी दादी ने देखा कि दादी जानकी जब अभी धीरे धीरे लंबा समय रह रही है बड़ी दीदी के जाने के बाद, तो दादी जानकी को जब भी आना होता था बड़ी दादी मुझे बुला लेती थी, क्योंकि मैं मधुबन में होती थी फिर सेंटर पर दादी भेज देते थे। शुरुआत में सबसे पहले मैं कामदेवी गई थी, 2.5 महीना में कामदेवी रुकी, लेकिन बॉम्बे का जो माहौल था, हम लोग गांव में बड़े पले थे, बड़े बड़े घरों में बड़े पले थे, तो वो बॉम्बे का घर मुझे जेल जैसा लगता था, अपार्टमेंट फ्लैट, तो मुझे थोड़ा अच्छा आया था। और मधुबन में भट्टी होने वाली थी, 6 मास से सेंटर पर रहने वाली कन्याओं की, और मुझे मधुबन में 5-5.5 मास हो चुके थे, लेकिन सेंटर पर मुझे 2.5 मास ही हुआ था। लेकिन वो भाई के साथ मैंने दादी को मैसेज भेजा कि दादी को पूछो कि मुझे भट्टी में आना है। तो दादी को जैसे ही मैसेज मिला, दादी ने तुरंत मैसेज किया। उस समय टेलीप्रिंटर हुआ करता था, फोन कॉल ट्रंक कॉल बुक करना पड़ता था और फिर बात होती थी। तो टेलीप्रिंटर में क्या होता था कि यहाँ से अहमदाबाद तुरंत मैसेज चला जाता था। तो सरला दीदी को कहा मैसेज में कि प्रवीणा को भी ये भट्टी में आना है, जो 6 मास से सेंटर पर रहने वाली कन्याओं की भट्टी है। फिर जब मैं यहाँ आई तो मैंने दादी को बोला दादी मैं ना वापस जेल में नहीं जाना चाहती हूँ। दादी कहती क्या बोला? मैंने कहा दादी ये बॉम्बे का माहौल तो मुझे जेल जैसा लगता है, खुला एनवायरमेंट नहीं है, तो मुझे थोड़ा घुटन महसूस होती है। तो दादी कहती ठीक है। मैंने कहा दादी ऐसी जगह पर भेजो जहाँ खुला खुला हो, घर को रोज बंद नहीं करती हो। दादी ने कहा ठीक है मैं इसी जगह पर भेजती हूँ। फिर दादी ने मुझे भावनगर में भेजा। उस समय गीता दीदी वहां रहते थे भावनगर में, क्योंकि खुला खुला घर था, सारे दिन लॉक लगाने की आवश्यकता नहीं थी। तो मैं ऐसे, और एक समय ऐसा आया कि दादी ने मुझे कहा कि प्रवीणा देखो अभी तुम बहुत सेंटर पर गई हो, अभी तुम दादी के साथ विदेश जाओ। दादी ही मेरा प्रोग्राम बनाते थे, तो कई बातों में दादी जानकी और दादी जी का ओपिनियन डिफरेंस होता था। दादी जानकी मुझे कुछ कहते थे तो मैं फिर भी कहती थी मैं बड़ी दादी से पूछूंगी। तो दादी, मेरा हमेशा कनेक्शन बड़ी दादी से ही रहा। दादी जानकी कुछ भी कहे मैं कहती थी मैं दादी से पूछ के बताऊंगी। तो इस रीति से दादी मेरे लिए बहुत ही दादी ने मुझे हमेशा बहुत प्यार किया है। माँ की पालना जो मैंने ली है तो दादी से ली है हमेशा। कभी भी मन भारी हो जाता था, हमें पता होता था कि दादी की दिनचर्या क्या है, हम पहुंच जाते थे दादी के पास। तो बहुत ही प्यार से दादी ने हमें पालना दी है और यही रहता है कि जो पालना ली है उसका रिटर्न हमें जरूर देना है। ओम शांति।